ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य G20 ब्राजील शिखर सम्मेलन में ठीक वैसे ही प्रासंगिक है जैसे कि पिछले साल नई दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन में था। रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई सत्र में अपनी टिप्पणी में श्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने इस पर संतोष व्यक्त किया कि G20 ने समावेशी विकास, महिला नेतृत्व और युवा शक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने ब्राजील की तरफ से भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक मुहिम में भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। 19वें G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में संबोधन के बाद प्रधानमंत्री सम्मेलन के दूसरे दिन सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण पर सत्र को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिटेन और अमरीका के बाद भारत चौथा वक्ता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ब्राजील के रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन से इतर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि दोनों की बातचीत वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों में संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा कि ये साल दोनों देशों के लिए विशेष है क्योंकि भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत हुई। वहीं श्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच भी कल एक द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी में संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि दोनों ने संस्कृति, शिक्षा और ऐसे अन्य क्षेत्रों में सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत इटली की दोस्ती दुनिया की बेहतरी के लिए काफी योगदान दे सकती है। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीट और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 सीटों के लिए कल मतदान होगा। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। चार राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी प्रचार कल समाप्त हो गया। मतदान बुधवार को होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की एक एक सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने लगातार दूसरे दिन मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 50 अतिरिक्त कंपनियां भेज रहा है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। कल रात 10 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 494 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में AQI का स्तर 500 दर्ज किया गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कल दिल्ली सरकार को सभी सरकारी कार्यालयों के लिए अलग अलग समय लागू करने का निर्देश दिया। यह आदेश दिल्ली सरकार और नगर निगम के सभी कार्यालयों पर प्रभावी होगा। दिल्ली नगर निगम के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे जबकि दिल्ली सरकार के दफ्तरों का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। ये व्यवस्था अगले साल फरवरी तक लागू रहेगी। इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने घोषणा की है कि दिल्ली के स्कूलों में आज से कक्षा 10 और 12 सहित सभी कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय भी शनिवार तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेगा। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कल सुबह हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार